हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नैना ने अपना शॉट पूरा करके पास रखी कुर्सी पर बैठकर अगले दृश्य के संवाद याद करने लगी जो स्क्रिप्ट में लिखे थे। इसी दौरान मेकअप आर्टिस्ट उसका टचअप करने आई और हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों को ठीक करने लगा। कुछ मिनट बाद विवान भी पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। वाह, तुम वाकई कमाल हो नैना, तुम्हारा शॉट तो दूसरे ही टेक में ओके हो गया। कोई नहीं कह सकता कि ये तुम्हारी पहली फिल्म है, तुम बहुत अच्छी और प्रोफेशनल हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ के लिए, मुझे नहीं लगता मैंने इतना अच्छा किया। आप लोगों से सीखकर मुझे खुद को और बेहतर करना है, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूँ, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे सिर्फ मैं नहीं, तुमने तो पूरे सेट पर सबको प्रभावित कर दिया है, सब यही बात कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी एक्टिंग लीड एक्ट्रेस मिस सिया राठौर से भी बेहतर है। उन्होंने अपने सीन में 10 टेक लिए और फिर भी डायरेक्टर ने मन ही मन ओके बोला, क्योंकि वो और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, विवान ने बताया। नैना बोली, आप मुझे सिया मैम से कैसे तुलना कर रहे हैं, वो तो इतनी प्रोफेशनल है और पिछले 5 सालों से इंडस्ट्री में है, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। और ज्यादा टेक लेना तो बड़े बड़े एक्टर के साथ भी होता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अच्छा काम करने की तारीफ तो बनती है ना। और तुलना की बात छोड़ो, सब तुम्हें मुख्य भूमिका के लिए लेने की सोच रहे हैं। तुम्हारी जगह सिया से एक्सचेंज करने की बात हुई, लेकिन मेरा क्या होगा, विवान ने शिकायत करते हुए कहा। सच में मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं, नैना को यकीन नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मना कर दिया, आखिर उस सिया राठौर को कौन झेलेगा, उसकी वजह से मुझे भी बार बार डायलॉग बोलने पड़ेंगे और पता नहीं कितनी बार सीन रीशूट होंगे, विवान ने डरे हुए चेहरे से कहा। नैना हंसने लगी और विवान भी उसके साथ हंसने लगा। विवान और नैना अब तक काफी सहज हो चुके थे, इसलिए उनका सीन बहुत अच्छे से शूट हो गया। विवान और नैना को पता नहीं चला, लेकिन सिया की असिस्टेंट प्रीति उनकी कुर्सियों के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसने जाकर सारी बात सिया को बता दी। ये सुनकर सिया को नैना पर गुस्सा आया। विवान का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन उसे लगा कि नैना फिल्म में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर सिया ने कहा, उस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। सिया के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और उसने मुट्ठियां भी बांध ली थीं। मानस भी विवान और नैना को साथ में देखकर चिढ़ रहा था, क्योंकि नैना ने उससे बात नहीं की थी और विवान से इतनी सहजता से बात कर रही थी, हंसी मजाक भी कर रही थी। इस विवान ने इस नई लड़की पर क्या जादू कर दिया है कि इसके साथ तो ये ऐसे बात कर रही है जैसे इसे सालों से जानती हो और मुझे देखकर भाग गई थी। कोई नहीं मिस नैना, आखिर कब तक भागोगी, मैं भी तो यही हूँ, मानस ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ देर बाद उनके अगले सीन के लिए सेटअप तैयार हो गया। एक असिस्टेंट नैना और विवान को बुलाने आया और वे दोनों साथ में अपना अगला सीन शूट करने चले गए। अनय का घर। मनस्वी काफी देर से परेशान थी, क्योंकि घर पर उसके और नौकरों के अलावा कोई नहीं था। उसे अपनी माँ की चिंता हो रही थी, उसे लगा कि कहीं उसकी माँ घर वापस तो नहीं चली गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो तो एक हफ्ते बाद जाने वाली थी। मनस्वी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस तरह सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई। वो उन्हें कॉल भी कर रही थी, लेकिन उसे पता चला कि वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। डाइनिंग टेबल पर रखा उसका फोन उसे मिला। ये मम्मी कहाँ चली गई और ये इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, जाने से कम मुझे बता देती, मैं कौन सा उन्हें रोकती, मनस्वी बड़बड़ा रही थी। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मनस्वी दरवाजे की तरफ भागी। उसने देखा कि उसकी माँ अकेली नहीं थी, अनय भी उनके साथ था और दोनों आराम से बात कर रहे थे। मम्मी, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, हार्ट अटैक के बाद हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आप तो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, अनय ने चिंता करते हुए कहा। उनकी सास कुछ बोल पाती उससे पहले ही मनस्वी बोली, आप दोनों कहाँ गए थे, पता है आपको देखकर मुझे कितनी चिंता हो रही थी, मम्मी आपके कम से कम बताकर तो जाती और आप अपना मोबाइल भी लेकर नहीं गई। मनस्वी की इस चिंता को देखकर उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ, वो अनय की तरफ देखने लगी और अनय पहले से ही उनकी तरफ देख रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि मनस्वी के इस तरह के व्यवहार की उम्मीद उन्हें नहीं थी। क्या हुआ? अब कोई कुछ बोलेगा? मैं कब से परेशान हूँ और आप दोनों अपने अलावा कभी मेरे बारे में नहीं सोचते हो। मॉम, आप भी, कम से कम आप तो, मनस्वी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। अनय से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी और आज सुबह भी उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी, रात की बहस की वजह से। अरे, मैं अनय के साथ गई थी, वही मुझे जबरदस्ती लेकर गया था, क्योंकि सुबह से, मनस्वी की माँ जवाब दे रही थी कि मनस्वी ने बीच में ही बोल दिया। हाँ ठीक है, जहाँ भी लेकर गया हो आपका दामाद, लेकिन कम से कम अपना मोबाइल तो साथ में ले जाती, मैं फ़ोन करके पूछ लेती तो इतनी परेशान ना होती। अरे मैं अपना फ़ोन भूल गई थी तो तुम अनय को फ़ोन कर लेती ना, वो तो पूरा टाइम मेरे साथ ही था। तुम्हें पता है मेरी वजह से आज वो अपने काम पर भी नहीं जा पाया, मनस्वी की माँ ने कहा और घर के अंदर आकर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ गई। मनस्वी और अनय दरवाजे पर ही खड़े थे। जैसे ही उनकी नजरें मिली, मनस्वी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अनय सुबह की तरह उसे इग्नोर करते हुए अंदर आया और बोला, आपकी वजह से नहीं मम्मी, एक्चुअली मुझे आज कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं था और आपको हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी था। हॉस्पिटल? सच में मम्मी, क्या हुआ आपको और आप दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी चलती साथ में। मम्मी, क्या आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? हॉस्पिटल का नाम सुनकर मनस्वी की आंखें हैरानी से खुल गईं और वो अपनी माँ से पूछने लगी, क्रमशः।